रहे हैं, विचार कर रहे हैं। देखो तो इसने अपनी आत्मा तक हमको बेच दी, दे दिया, मैं इनको क्या दूं? मैं यदि इनको अपना सर्वस्व भी दे दूं तो कुछ नहीं दिया। एक गरीब आदमी भिक्षा मांगकर पांच आने पैसे या चार आना, चार आना माने 25 पैसा किसी को दान दे देता है, और एक विराट धनी आदमी 1,00,000 रुपया देता है, तो दोनों में दानी कौन होगा? इस चीज को हम लोग नहीं समझते, नहीं समझते हैं हम लोग। इस चीज को यूं समझिए, युधिष्ठिर महाराज 5 पांडवों के साथ में अट्टालिका पर ऊपर में रात में सो रहे थे, कुछ हंस उड़ करके जा रहे थे। हंस में से एक ने कहा, ओ युधिष्ठिर महाराज की दानशीलता की कोई सीमा नहीं, आज तक न भूतो न भविष्य, ऐसा कोई न हुआ न होगा। दोस्त बक 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 मत करो, चुपचाप रहो, बेकार की बात, बकवास मत करो। अच्छा क्यों? अरे इनसे तो बड़ा वो जो सकट के नीचे रहने वाला क्या नाम था, रैक्य मुनि, इनसे बहुत दानी है, बहुत बड़ा भारी दाता है, बस इतना ही था, और उड़ करके चले गए। पांचों पांडवों से उन्होंने कहा, भाई ये क्या कर रहे थे? सदैव पक्षियों की बात जानते थे, उन्होंने बतलाया या नकुल? अरे ये तो एक तो कह रहा था कि महाराज युधिष्ठिर के समान और कोई दयाल नहीं, दानी नहीं है, और दूसरे का क्या बकवास कर रहा है, इनकी तो कोई गिनती नहीं है दानियों में। अरे दानी है तो वो रैक्य मुनि है। भाई रैक्य मुनि कौन है पता लगाओ तो, और कैसा दान करता है? कोई पता लगाने गया, पता नहीं लगा जी कहां पर रैक्य मुनि कौन रहता है, कहां रहते हैं। तो कृष्ण से पूछा, कृष्ण ने कहा जी प्रयाग में चले जाओ, गंगा जमुना सरस्वती के तट पर, वहां पर एक ब्राह्मण है, तुम पूछ लेना रैक्य मुनि। वहां पर गए, जाकर के देखा एक ब्राह्मण है गरीब दरिद्र, वो एक गाड़ी के नीचे थकड़े के नीचे अपना उसने कुटी बना रखी है, कुटी नहीं वो गाड़ी ही उसकी कुटी है, और उसी के नीचे रहता है और खिलौने वृत्ति के अनुगमन करता है। अर्थात जब खेत कट जाते हैं तब वो खेत में जब कृषक अपना सब अन्न वहां से उठा ले जाता है तो उस खेत में कुछ दाने पड़े रहते हैं, उन्हीं को चैन कर और वो घर में ला करके किसी प्रकार से सत्तू बना करके और उसमें से आधा दान कर देता है ब्राह्मणों को, थोड़ा सा तो होता है, और किसी प्रकार से अपना गुजारा बाकी से कर देता है। जिसके पास कुछ भी नहीं है तो भी किसी प्रकार से उनको दान देता है। महाराज युधिष्ठिर कितने बड़े राजा और कितने धन के ये मालिक हैं, इन्होंने कर दिया तो क्या किया? भीख मांग करते तो किया नहीं, और इसने इस प्रकार से किसी से भीख में भी नहीं मांगी, खेत में पड़ा हुआ जिसका कोई भी मालिक ने उसको चुन करके ले करके उसे भड़बुन जैसे भुनवा करके और उसका दान कर दिया, ये बड़ा है। ऐसे ही कृष्ण सोचते हैं मैं विश्व ब्रह्मांड की सारी संपदाओं का मालिक, मैंने यदि कुछ दे दिया तो क्या दिया, और इसको कुछ नहीं है, उसने आत्मा को दे दिया, अपनी जो कुछ था वही आत्मा ही दे दिया, मैं इस ऋण से कैसे ऋण हूंगा? कृष्ण ये विचार कर, और किसी भी अवतार में ऐसा विचार नहीं होगा। इफ एनी वन गिव्स सरेंडर हिमसेल्फ एंड सेल्फ दैट आई एम ऑफ कृष्ण, कृष्ण इज माइन, देन कृष्ण गिविंग हिम एवरीथिंग हिमसेल्फ बट ये थिंक्स दैट आई हैव गिवन नथिंग, सो कृष्ण इज हाउ मच क्या उदार कृष्ण।
not to any other.
اسی کو یہ بتلا رہے ہیں میں اسے کیا دوں. مہامدن چوڑامنی اداروں میں بھی سب سے پرم ادار کرشن. دیکھا جی آتما سے تو کوئی اور کوئی چیز نہیں ہے, آتما دینے میں بھی ان کو لگ جائے. کرشن کو سدما بپر اس لیے رات میں 16,000 عیسوی جمن کی تھی ان کے طرف سے اپنے نہیں, ایک ایک ہاتھی ایک ایک گھوڑا ایک ایک کلش ایک ایک لوٹا ایک ایک داسی ایک ایک گائی ایک ایک محل دان کر دیا, اپار سمپتی دے دی رات میں ان کو دیکھ. جب گھر میں گئے تو دیکھا جی میری جھوپڑی کہاں گئی, میری پتنی کہاں گئی. دیکھا جی 16,000 کشوری رمنیوں کے ساتھ میں ایک پرم سندری ان کے طرف میں آ رہی ہے کیرتن کرتے ہوئے چامر بھجن لیے ہوئے. یہ تو بیچارے لجا سے پیچھے ہٹنے لگے اور وہ مسکراتے ہوئے کیرتن کرتے ہوئے ان کے طرف میں بڑھنے لگے. آ کر کے ان کے گلے میں مالا دیا, یہ اس کے ساتھ میں اسپرش ہوا تو ہی یہ پرم سندر نوجوک بن گئے. کرشن نے رات ہی میں اس کو اس کی پتنی کو جن کے استن سوکھ گئے تھے جو جواوستھا میں وردھا جیسی لگتی اس کو پرم سندری بنا دیا. ان کو نہیں بنایا کیوں, جدی ان کو بنا دیں گے تو ان کی اسی نہیں پہچانیں گی. ان کے پہچاننے سے نہیں پہچان سے کوئی بات نہیں, ان کی اسی ان کو پہچان لے بس یہی بات. بس اس کو پرم سندری بھائی اس نے پہچان لیا اور ساتھ ساتھ میں ان کے گلے میں مالا دی اور تو ہی یہ سوپرش بن گئے. اتنا بڑا بھاری سمپتی پا کر کے رونے لگے میں کیا کروں, اب تو مایا مجھے پکڑے گی, مجھے کیا کرنا چاہیے. تب بھگوان نے کہا یہ نہیں, میری کرپا سے یہ سارا ویبھو سارا مایا تم کو اسپرش نہیں کرے گی. تم پہلے جیسا نسکن چند ہو کر کے بھگوان کا بھجن کرے گا. یہاں تنا بادی بے دکھایا سرنگ پنراپی یہی چھائی پاوی مور سنگ. اسی طرح سے یہاں اپنے بھوشنوں سے ان کو لاد دیا اور سندر سنگار کر کے گوپ ایک دم بنا دیا. اپنے بھکتوں سے بھی بھکتوں کی مہیما کو پرکاشت کیا. یہ کرشن جو پرم ادار ہیں असाधारण कृपा किया उसने. एक तो स्वयं स्वरूप का रूप धारण करके उनका गुरु को रूप धारण करके गोप कुमार और इनके पास में गए और जब 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 जरूरत हुई तब तक इनको हरि कथा के माध्यम से मंत्र दे करके हरि कथा के माध्यम से उनको ऊपर उठाते थे. जब कहीं इनकी रुकआउट होने की स्थिति आती वहां पर चले जाते और उनको फिर दर्शन दे करके उनको ऊपर उठा देते और अंत में गोलोक वृंदावन में ले गए. इसी प्रकार से जो लोग अपने के गुरु के चरणों में शरणागत हों उसके अनुसार में चलेंगे एकदम सब आकांक्षाओं को छोड़कर के कामना वासना आत्मसमर्पण करने के साथ ही कृष्ण उसे ग्रहण करते हैं और धीरे धीरे वैष्णवों का संग दे करके और गोलोक वैकुंठ धाम में पहुंच जाएंगे. पहले तो वहां पर पहुंच जाएंगे जहां पर कृष्ण की लीलाएं होती हैं प्रकृति. वहां कुछ दिन उनका संग में उसका चित्त शोधन होगा और उसकी वैसे ही वासना होगी सेवा करने और उसके पुष्टि होने पर गोलोक वृंदावन में अपने नित्य धाम में ले जाएंगे. उसी को सनातन गोस्वामी दिखला रहे हैं. उनकी सबसे बड़ी कृपा क्या है, अपने प्रिय परिकर बना लेते हैं. इनको तो अपना सखा बनाया और रूप गोस्वामी को क्या बनाएंगे, सखा रघुनाथ दास गोस्वामी को. और यदि कोई रूप गोस्वामी का या रघुनाथ गोस्वामी का कृपा पात्र होगा या कृष्णदास कविराज गोस्वामी का कृपा पात्र होगा उनको क्या देंगे, उनको क्या देंगे. उनकी जैसी अभीष्ट होगी कामना वैसे ही पूर्ण कर देंगे. ये केवल एक रस का यहाँ पर दिखला है, सिंगार रस का वर्णन नहीं किया क्योंकि सुगोप्य है, सुगोप्य है. अब इसी से समझो ये कैसे कृष्ण की कृपा होती है. दुर्भागा लोग इसको ग्रहण नहीं कर पाते. चैतन्य चैतामृत में लिखा है महाप्रभु प्रेम बन्या लेकर के जगत में आए। ये प्रेम की बाढ़ कहाँ से आई? गोलोक वृंदावन नगर संकीर्तन के माध्यम से, हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से जगत में बहाए। बाढ़ इतनी प्रबल थी कि उसकी धारा में, प्रवाह में स्त्री, वृद्ध, पुरुष, लोग, नर नारी, बूढ़े, अपंग, अंधे, लूढ़े, लंगड़े सभी लोग उसमें डूबने। किंतु जो अपने को परम बुद्धिमान और दक्ष कुशल समझते थे वो लोग भाग रहे हैं। वो कौन? पड़ुआ, मायावादी, कुतार्की, पाषंडी, ये सब भागे वहां से। कहां से भागे? नवद्वीप से भागे। कहां भागे? अत्यंत उच्च पहाड़ियों पर। कहां? हरिद्वार में और काशी में पहुंच गए। कुछ लोग उड़ीसा में गए। महाप्रभु ने उड़ीसा में भी उस बाढ़ को छोड़ दिया। उसमें ही सार्वभौम जैसे लोग सब डूब गए। अब वहां से भागे लोग काशी में। काशी में महाप्रभु शस्त्र रूप में बाढ़ को लाए और वहां पर भी 60,000 सन्यासी और उनके गुरु सबको डुबा दिया। ऐसे महाप्रभु की बाढ़ उन बाढ़ में, उस बाढ़ में जो नहीं डूबता है प्रेम की बाढ़ में, संकीर्तन नहीं करते हैं, कृष्ण का आश्रय ग्रहण नहीं करते और ग्रहण करने पर भी महाप्रभु की धारा में, महाप्रभु जिस चीज को ले आए थे देने के लिए, क्या अनर्पित चरिंग चिरात करुणावतीर्ण कलो समर्पयी तुम उन्नत उज्ज्वल रसा, उन्नत उज्ज्वल गोपियों के भाव को देने के लिए। वो दुर्भाग्य है जो चैतन्य महाप्रभु और उनके परिकरों से बहुत दूर भाग करके इस चीज को ग्रहण नहीं कर पाते। महाप्रभु जी के संप्रदाय में आने पर भी इन भावों को अछूता समझते हैं, अछूत अस्पृश्य समझते हैं, वर्णन करना भी नहीं सुनना चाहते। वो दुर्भागा है सबसे जगह। विशेषतः जन शर्मा का समस्त जितनी कामना थी वो समस्त कामनाएं परिपूर्ण हो गईं। उनकी क्या कामना होगी? जिस समय सुन रहे थे स्वरूप दामोदर से कथा, सख भाव कोई बातें कह रहे थे, इसलिए उसको पाने की लालसा जागृत हुई। यदि कोई गोपी भाव वाला होता तो सुन करके सख भाव से भी तृप्त नहीं होता, वो क्या करता? कहीं पर जाता और जगह जहां पर यह मिलता और वहां जाकर के इसमें पूरी लालसा लेता और लेकर के वैसा साधन भजन करता और फिर से गोलोक वृंदावन में उन्हीं के अनुगत्य में, रागात्मिक भक्तों के अनुगत्य में वो सेवा करता। इसका कारण क्यों? क्यों परिपूर्ण हो गए? कैसे? ऐकांतिक भक्तों के को छोड़ करके, कृष्ण की सेवा छोड़ने वाले बहिर्मुख व्यक्ति या योगी, ज्ञानी, तपस्वी, अन्य देवताओं की उपासना करने वाला, भगवत स्वरूपों की भी सेवा करने वाला, इन सबसे उदासीन रहते। एकादश स्कंद में ये बतलाया गया है, न पारमेश्यम न महेंद्रभीष्णम न सार्वभौमम नरसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवं वा मय्यर्पित में क्षति मत बिना न कृत। एकाश में ऐसा कहा गया है। कृष्ण ही उद्धव जी को बतला रहे हैं उद्धव संवाद में। जो लोग, जिन लोगों ने मुझे आत्मसमर्पण किया है, मुझे मैंने किया ब्रजनंदन श्याम सुंदर के साथ। ब्रजनंदन कृष्ण के भी पांच स्वरूप हैं, दासियों के कृष्ण नंदनंदन, सखियों के जसोदानंदन, जसोदा जी के पुत्र के रूप में या नंद के पुत्र के, और गोपियों के गोपी जन वल्लभ, राधा कांत इत्यादि। उनमें से किसी एक स्वरूप के प्रति यदि किसी ने एकांतिक रूप में आत्मसमर्पण किया है, कैसे मालूम होगा? यदि दशरथ के कृष्ण आएंगे भी तो उनसे अधिक प्यार नहीं। उन्होंने गोपियों के जो प्राण बल्लभ है उनके चरणों में उन्होंने अपने को समर्पित रखा। जब तक उनकी सेवा प्राप्ति नहीं होगी, कैसी सेवा? जयतं सुरतं मंद मतिर गति मत सर्वस्व पदाम भोज राधा मदन मोहन, ये दूसरा वाला दिव्यद बिंदारण्य कल्प द्रुमाद श्रीमद रत्नागार सिंहासन श्री श्री राधा श्री गोविंद देवो पृष्ठालिवी सिद्धमान, इसकी लालसा। इस लालसा के बिना उनकी कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। वहीं पर कृतार्थ में जब गोपी गोपीनाथ दोनों रहेंगे, रासलीला में उनकी सब सेवाओं को करने का अवसर मिलेगा, तब उनकी कामना पूरी, अन्यथा नहीं होगी। तो उसी तरह से जिन्होंने कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण किया है, मुझे छोड़ करके वे ब्रह्मा का पद भी लेना नहीं चाहते, हम लोग लेंगे कि नहीं? हम लोग तुरंत ले लेंगे। ब्रह्मा की पद की बात क्या, अभी कोई 10-20 लाख रुपया भी दे दे, 1 लाख की बात करते 10,000 दे दे, अरे 100 रुपये की नोट देते आप नहीं छोड़े। अभी बोला जी हरी कथा पीछे सुना जरा, 100 रुपये की नोट ले लो तो वो ले लें। तो ब्रह्मपद, इंद्र का पद, सार्वभौमत्व, पृथ्वी का राज्य चक्रवर्ती, पाताल इत्यादि का देवता, अधिदेवता, योग सिद्धि। अभी हम कहेंगे, जैसे अभी सुन रहे हो, सुन लो, इसके बाद में मेरे यहाँ आ जाना, मैं ऐसा सिद्धि प्रदान दूंगा जो चिट्ठी बजाते ही ऐसे जो चाहेगा वही हो जाएगा। अभी आकाश में उड़ सकते हो, जल में चल सकते हो, जो कुछ चाहोगे वही हो जाएगा। बस जिसको कह दो ये मर जाए तो मर जाएगा, ये जीवित हो जाए तो जीवित हो जाएगा, रिद्धि सिद्धि सब कुछ मिल जाएगा, सब छोड़ छाड़ करके। तो जो लोग ऐसे हैं जो कृष्ण के बिना ये ब्रह्मपद, इंद्रपद, राज्य चक्रवर्ती का पद, पाताल का आधिपत्य, योग सिद्धि और मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, ऐसे जो एकांतिक भक्त हैं, इसलिए उनको को मैं क्या दूंगा, इसलिए अपने को भी दे देता हूं। तृतीय स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये भी भगवान के आवेश अवतार हैं, ज्ञान के अवतार हैं, कपिल देव तो वो कह रहे हैं, न किंचित साधो धीरा भक्त्या एक कांतिनो मम वाच्छन्त अपि मया दत्तम कैवल्यम अपुनर्भवम। कपिल देव जी ने अपनी मैया के पास में देवहूति के साथ को कह रहे हैं, मेरे प्रति अत्यंत प्रीतियुक्त जो अत्यंत धीर साधु है, वैष्णव है, धीर माने क्या, धी माने बुद्धि, ऐकांतिक बुद्धि विशिष्ट मेरे प्रति जिनकी लगी हुई है, मैं उनको सालोक्य, भगवान जी श्लोक में रहते हैं वैसा ही लोग, स्वस्ति, अपने समान ऐश्वर्य, सामीप्य, निकटवर्ती अथवा एक साथ में रहना और एकत्व माने सायुज्य, ये देने पर भी वो ग्रहण नहीं करते। अन्य वस्तुओं की तो काम नहीं क्या, सुखदेव गोस्वामी को देखो, मुक्ति की कामना पहले थी किंतु व्यास के संग में क्या बंद हो जाता है, व्यास के संग में सबकी इच्छा छोड़ दी, कपड़े तक नहीं पहनते, खाने की कोई चीज भी साथ में नहीं, कोई कुटुर भजन करने के लिए कुटी तक नहीं, पानी पीने की एक लोटा में नहीं, कमंडलू भी नहीं, रक्षा के लिए तो डंडा भी नहीं, कुछ नहीं, जिधर पैर चलते हैं उधर ही चलते हैं, उनको मुक्ति देने पर भी नहीं लेंगे। ऐसे ही भक्त जो होगा एकांतिक निष्किंचन, कृष्ण का उनके प्रति वैसा ही भाव होता है, वो मेरी सेवा के अतिरिक्त और कुछ प्रार्थना नहीं करते, यदि कोई प्रार्थना करते हैं तो एकांतिक कृष्ण भजन प्रायण नहीं है। और भी इसके प्रमाण हैं, न किंचित साधो धीरा भक्त्या हे कांतिनुमम बाध्यम चपि मया दत्तम कैवल्यम अपुनर्भवम, जो मेरे पद की चरणों की सेवा करने की आकांक्षा रहते हैं उनकी सारी चेष्टाएं मेरे मुझे प्रसन्न करने के लिए होती है, जो कुछ भी करते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। हम लोगों का ऐसा नहीं होता, हम लोग अपने पसंद की बात करते हैं, चाहे गुरु को भगवान को वैष्णव को इससे प्रीति हो ना न हो इसके लिए हम लोगों की कोई जरूरत नहीं। हम मिर्च खाते हैं तो वो कृष्ण को भले ही ना लगे हम मिर्च डालें, हमको जो चीज प्यारी है वही करेंगे, अपने मन जिद्दी रहेंगे, किसी की भी बात नहीं मानेंगे। ऐसे करने वाले को कृष्ण ग्रहण नहीं करते, गुरु भी नहीं करते, वैष्णव भी नहीं करते, उनकी किसी से बनती ही नहीं है, भले ही अपने मन से सुख करें। एक आदमी ने कहा, गुरु जी ने कहा, जो देखो भाई आज मेरे लिए पपीता सिद्ध दे देना, दाल में देना। कभी अच्छी बात है, कभी गुरु जी को पपीता देंगे? आज मैं छेना का, वो क्या बनता है, डालना बनाऊंगा, छेना का रसा, और रबड़ी बनाऊं, और तरह तरह की चीज मालपुआ बनाया, और बड़े प्रसन्न होकर के ले गया, इतना सुंदर चीज बनाया। गुरुजी ने देखा, देख करके बड़े दुखी हुए, ये देखे तो हमने कहा था जैसे कुछ पपीता दाल में सिद्ध देना और इसने ये सब बनाया। कहे ठीक, कहे ले जाओ, मैंने खा लिया, उस दिन खाया ही नहीं। उन्होंने सोचा, शिष्य ने देखा, नहीं खाया तो क्या बात है, हमने तो बनाया अच्छी तरह से, न खाएं, किंतु हमने जो बनाया इतना, इसलिए कितना सुंदर रूप से हमने बनाया, दूसरों लोगों को प्रसाद बांट दिया और उसी में तृप्त हो गया। और उधर में गुरु जी क्या कर रहे, एक दूसरे शिष्य को कहा, बेटा अभी सिद्ध दे दो, तो बस ने सिद्ध दे दिया, बस कहा करके तृप्त हो। इसलिए हमारी सेवा की अभिलाषा के ऊपर में निर्भर नहीं करता है, चाहे जितना भी उन्नत हो, ये कृष्ण की इच्छा के लिए होता है, कृष्ण जो चाहते हैं वैसा ही करता है। महाप्रभु चाहते हैं कि हमको साथ दिया जाए, अरे क्यों, मैं महाप्रभु को साथ क्यों देने जाऊं, अरे वो राबड़ी खाते हैं, गोवर्धन में 56 प्रकार का भोग खाते हैं, और मैं उनको भनेला साथ दूंगा, मैं कभी नहीं दे सकता, तो महाप्रभु को देने से क्या करेंगे। वो जो राबड़ी और महंत भोग खीर दिया ना, तो वो तो बांट दिया और अपने भूखे रह गए, याद यदि साथ था तो साथ खा दिया। इसलिए सेवा देकर के कृष्ण की स्थिति होने लायक सेवा करनी चाहिए। वी शुड नॉट डू व्हाट वी थिंक गुड आर बेटर, बट वी शुड डू द सर्विस ऑफ कृष्ण व्हाट कृष्ण वांट, इट डिपेंड्स ऑन कृष्ण प्लेजर। We should not see our pleasure, but we should think the pleasure of Krishna. ये भक्ति है, अपनी इच्छा भक्ति नहीं है भाई। इसलिए ये कह रहे हैं, जो मेरे प्रीति के लिए मेरी सेवा करते हैं उनकी सारी चेष्टाएं मेरे प्रीति के लिए होती है, जो कुछ भी करता है उनकी प्रीति के लिए करता है। एक बार महाप्रभु जी से किसी ने पूछा, उच्च स्वर से नाम किस लिए करते हो, भगवान क्या बह रहे हैं, मुझे बह रहे तो नहीं है, स्त्री वही करती है, क्या हो जाता है, तुम छू देता है क्या है, समर्पित चित्त हैं ये लोग, जो कृष्ण चाहते हैं वैसे ही सेवा करते हैं। इन लोग को भगवान यदि मुक्ति भी दें, वो मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं। दुर्वासा जी को, दुर्वासा के प्रति भगवान ने भी ऐसा कहा गया, मत्सेया प्रतीतम तेजालोक्यादि चतुष्टयम् नैच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतो अन्य काल विप्रुतम। हमारे सेवक लोग हमारे द्वारा दिए जाने होने वाले सालोक्य स्वामी प्रशास्ति सायुज्य इत्यादि पांचों प्रकार की मुक्तियों को नहीं लेते। मैं यदि खुद भी देता हूं तो नहीं लेते। तो संसार में काल के द्वारा नष्ट भ्रष्ट किया जाने वाला कौन कोई भी फल है उसको कैसे लेंगे? काल के द्वारा कैसे? अभी आज हम हैं, कल मर जाएंगे। काल अभी संपत्ति है, नष्ट हो जाए। इसलिए काल के द्वारा नष्ट किए जाने वाली कोई भी संपत्ति होगी उसके लिए आकांक्षा क्यों करेंगे ये लोग? इसलिए नहीं करते। इसलिए स्वयं रूप में यदि मोक्ष भी मिल जाता है नहीं ग्रहण करते हैं। इसलिए परमात्मा परमेश्वर ब्रह्मा इत्यादि का भी पद नहीं। इसी प्रकार से त्रिक पत्नियों ने भी नाग पत्नियों ने भी इसी प्रकार के उदाहरण दिए। आज हम लोग यहीं पढ़ रहे हैं। इसके बाद ही ये भक्ति रसायन आरंभ करेंगे। हम लोग जल्दी से ही इसका आरंभ करेंगे। अभी हम लोग
पंथाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमस्ते चरणारविन्दम्।
साधु संत की महिमा का वर्णन किया गया। सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि साधु संघ में जन शर्मा की समस्त सारी आकांक्षाएं पूर्ण हो गई। परिपूर्ण परिपूर्ण असताम गतः, साधु संघ में सारी आकांक्षाएं पूर्ण हो जाती हैं, कोई भी पूर्ण बाकी नहीं रहती। कृष्ण की प्रेमा भक्ति होती है। अत्यंत सरल सहज रूप में यदि साधुओं का संग मिल गया, इसलिए कहते हैं नाग पत्नियां कहती हैं न ना कपेशम न च सार्वभौम न पारमेशम न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धि पुनर्भवंगवा वांछी छंति यत पादर जह प्रपन्ना। कर रही हैं कृष्णचंद्र जी जब अपने भारत से काली का स्तंभ तोड़ दिया अहंकार, मन ही मन में जब वो नारायण का शरणागत हुआ तो उनकी पत्नियां कृष्ण की कृपा प्रार्थना कर रही। अभी तक तो चाह रही थी ये नास्तिक मर जाए, हम विधवा हो जाए, बल्कि वो अच्छा है, विधवा होना ही अच्छा है ऐसे नास्तिक पति के रहने के। किंतु जब देखा जे नारायण के वो जहां शरणागत हुआ तहां झट प्रार्थना करने लगी, अब तो ये आस्तिक बन गया आपके चरण कमलों के प्रभाव से, तब उनके लिए प्रार्थना करने लगी। प्रभु उनके तरफ में ऐसे मुस्कुराते हुए देखो माने कुछ कहते हैं कि अच्छा तो तुम कोई वर ले लो, क्या चाहती है? इसकी तो प्राण मैंने छोड़ी दिए, इसको बचा दिए, किंतु और भी यदि कुछ तुम चाहती हो तो मैं दे दूं। उसी के उत्तर में नागपत्नियां प्रार्थना कर रही हैं श्लोक के द्वारा न ना कपिष्टम न च पारमेष्टम। बीतासुर ने जैसा कहा था आपकी चरण धूलि चरण रज की प्राप्ति की ही हम आशा रखती हूं, आप ऐसी कृपा करें जो ये जो कालिया नाग के ऊपर अपने अवांछित रूप में मैंने बिना चाहे हुए ही आपने जो चरण रख दिया उसे हम लोग भी वंचित न रह जाए। उसके अतिरिक्त उसे छोड़ करके हम स्वर्ग स्वर्ग चक्रवर्ती राज्य ब्रह्मपद न नागपृष्ठम, नागपृष्ठ माने स्वर्ग, और न सार्वभौमम पृथ्वी का अखिल सम्राट होना, न पारमेश्यम माने ब्रह्मपद, न रसाधिपत्यम पाताल लोका आधिपत्य जैसे बलि महाराज जी को दिया था, न योग सिद्धि, योग सिद्धि भी नहीं चाहती, और कि तो बात क्या अपुनर्भवम मोक्ष नहीं चाहती, बस वांछन्ति यत् पाद रजः प्रपन्ना। ऐसा जो भगवान के चरण रजों को पा लेते हैं ऐसे ही उनकी कामना होती है। दसवें स्कंद में द्रौपदी जी और महिषियों के बीच में वार्तालाप हुई, जबकि सूर्य ग्रहण करके समय में पांचों पांडव भीष्म पितामह द्रोण कर्ण इत्यादि सभी स्नान करने के लिए सूर्य ग्रहण में स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए। उस समय द्रौपदी इन महिषियों के साथ में रानियों के साथ में मिली, तो उस समय में द्रौपदी जी की का प्रभाव देख करके ये उनसे प्रार्थना कर रही थी महिषियां। जैसे कृष्ण की महिषी होकर के द्रौपदी जो कृष्ण की इतनी प्रिय है इनसे ये लोग शिक्षा लेना चाहती हैं। हम लोग लाखों हैं, कितना 16,000, और एक कृष्ण का मन नहीं रख सकती, और तुम अकेले पांचों पांडवों का और कृष्ण का भी मन रख लेती हो, सब समय तुम्हारी कथा कहते हैं, हम बुलाने से शायद नहीं आए। और द्रौपदी ने थोड़ी सी पुकार की तो वो झट आ गए। क्यों नहीं? ऐसा तुम क्यों करती हो? तो उन्होंने कहा, द्रौपदी जी ने उन्होंने कहा, जैसे उन लोगों ने ये तुम जादू जानती है या टोना जानती है या कौन सी ऐसी चीज का प्रयोग करते हैं जिससे तुम्हारे पांचों पांडव और कृष्ण भी तुम्हारे वशीभूत हैं? हम लोग इतनी इनकी सेवा करती हैं तभी नहीं प्रसन्न कर सकते, और तुम इनको बुला लेती हैं तुम्हारे वशीभूत। क्यों? जादू टोना जानती हैं वे, खबरदार जादू टोना का नाम मत लेना। पति को या अपने प्रियतम व्यक्ति को अपने वशीभूत करने के लिए जादू टोना किसी बभूति इत्यादि कोई प्रयोग इत्यादि मत करना, कोई मंत्र तंत्र को मत बुलाना। मंत्र तंत्र से यदि ऐसा करने की चेष्टा करेगी तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, वो तुमसे एकदम बहुत दूर चले जाएगा। इस तरह से चेष्टा मत करो, उसके लिए हम जो एक तुमको बातें करिए इसका तुम लोग प्रयोग करना। हम जिसकी सेवा करते हैं वो व्यक्ति वो ये देखो ये वो क्या चाहते हैं, हमारे कार्य कुशलता का कोई भी मूल्य नहीं, वो क्या चाहते हैं वो करो। पहली नंबर क्या चाहते हैं, जैसे भरत जी को उन्होंने समझाया, कौन जनक, राम क्या चाहते हैं ये पूछो। तुम अपने मन से सोचते हो कि मैं अपना राज्य सब उनके चरणों में दे दूंगा और उनके चरणों की सेवा करूंगा इसलिए राम खुश हो जाएंगे, उनसे पूछो तो ये बात ठीक है क्या चाहते हैं। इसलिए जिसको हम प्रसन्न करना चाहते हैं, जिसके अनुगत्य में हैं, उनकी भावना समझ करके उनके अनुरूप काम करने की चेष्टा करो, ये सेवा है। दूसरी बात क्या, जिन लोगों को वो स्नेह करते हैं कृष्ण उनकी सेवा करो, उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करो। कृष्ण को न करो कोई बात नहीं, किंतु जिन लोगों को कृष्ण प्यार करते हैं ये मंत्रों से भी औषधि है, बहुत तगड़ी औषधि है। जिनके वो प्रिय हैं, जिनको वो प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, उनको प्रसन्न रखने की चेष्टा, ये बड़ी भारी औषधि है, मंत्र है। यदि किसी को वशभूत करना है तो ऐसा ही किया। यदि राम को प्रसन्न करना है तो हनुमान जी को प्रसन्न करो पहले। यदि कृष्ण को प्रसन्न करना है तो गोपियों को प्रसन्न करो, उनमें भी जो सबसे उनकी प्यारी हैं उनको प्रसन्न करो। ये तो मैं कह रहा हूँ व्याख्या के रूप में, किंतु ये उनको कह रही हैं द्रौपदी जी, उनको जिसको ये सबसे अधिक प्यार करते हैं कृष्ण, स्नेह करते हैं, उनको स्नेह करो। उनकी कैसे वो प्रसन्न होंगे इसके लिए चेष्टा करो। अपनी इससे ये अच्छा होगा ये मत देखो, मुझको क्या अच्छा लगा, कौन सी सेवा हमको खूब सुंदर है और कौन सी सेवा मैं सुंदर करता, इसे नहीं, हमारी किस सेवा से कैसे वो प्रसन्न, ये। और दूसरा नंबर जिसको वो स्नेह करते हैं उनको नंबर दो, और तीसरा पति के उठने से पहले उठो। अपना जो आराध्य है या वो तो वहां पर वो करें, यहाँ पर गुरु शब्द से भी आ जाएगा, अपने पति अपने गुरु इत्यादि से पहले उठो और उनकी सेवा की सब चीजों को ठीक कर लो, क्या क्या उनकी जरूरत हो। और वो जब सो जाते हैं सबको खिला पिला करके सब काम ठीक ठाक करके तब उनको कौन सा कार्य अभीष्ट है ये विचार करके सोचो, उनके कहने के पहले ही वो काम तुम्हारा पूरा हो जाना चाहिए। इन सब बातों से पति प्रसन्न हो जाते हैं, बसी दूर हो जाते हैं। मैं पांडवों के साथ में ऐसा ही करती हूँ, जिसको प्यार करते हैं ना उसे हमारा स्नेह, उसको मैं आदर करती हूँ। क्या आदर करते हैं, उनको प्रिय ये काम है ब्राह्मण लोगों को या गरीब लोगों को जो दान देना, मैं उसी के अनुरूप में रखती हूँ ये सब चीजें, उनके सोने के पहले से ठीक रखती हूँ, उनके सोने उठने से पहले उठ जाती हूँ, उनके सोने के बाद में खा पी करके और सब लोगों को खिला करके तब अंत में सब रसोई बासन चौका सब साफ करवा करके सब युद्ध होने के समय में सब उनके रथ और सब चीजों को पहले से ठीक कर देती हूँ, इसलिए वो वशीभूत है। तुम भी यदि करना चाहती हो तो ऐसे करो। और ठीक ललिता जी ने राधा जी को ये बात कही, इसका भी वर्णन शायद आनंद बिंद में रूप गोस्वामी के ललित या विदग्ध माधव में, ललिता जी ने यही शिक्षा श्रीमती राधिका जी से, जिसको वो चाहते हैं कृष्ण उसकी सेवा करो। उसी समय की बात है। अंत में ये सब बातें कह करके कहने पर द्रौपदी जी के प्रति महिषियां कहने लगी, बहुत कृतज्ञता समझ करके उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए कह रहे हैं, हे साध्वी, किसको कह रही हैं साध्वी, द्रौपदी जी को कह रहे हैं, हे साध्वी देखो तो इनको जयद्रथ एक बार हरण करके ले गया, रजस्वल अवस्था में उनके केस को पकड़ के दुशासन ले गया और बीच भरी सभा में नग्न करने की चेष्टा की, और भी कितनी बातें हैं और इनको साध्वी कह रहे हैं। हे साध्वी, साध्वी कहने का ये तात्पर्य कृष्ण भी इनके वशीभूत हैं, और की तो बात क्या, जगत में सबसे बड़े पति कौन है, कृष्ण सबसे पतियों के पति हैं, इसलिए यदि उनकी कोई आराधना करते हैं और उनके एकांतिक रूप में उनके सिवा दूसरे की आराधना नहीं करते, ये सबसे बड़ा पतिव्रत धर्म है। हे साध्वी, हम विश्व का साम्राज्य सार्वभौम पद इंद्रत्व भोज्य ऐहिक और पारलौकिक सुख भोग ये सब कुछ नहीं चाहती, वैराज्यम पारमेष्टम वा आनंतम वा हरे पदम कामयामह एतस्य श्रीमत् पादरज कुंकुमाढ्या मूर्धना बोढ़ुम गदाधृत। हे साध्वी, हम लोग वैराज्यम, विशेष रूप से राज्य साम्राज्य नहीं, इंद्रत्व भी नहीं चाहते। भोज्य माने भोग करने, भोज माने भोग्य, कोई भी भोग पदार्थ जो सुंदर से सुंदर है, अहिक और पारत्रिक माने स्वर्ग इत्यादि सब, या ब्रह्म पत्तक सब नहीं चाहते। अणिमा सिद्धि समन्वित ब्रह्मपद, अणिमा और दूसरी जो अष्ट सिद्धियां हैं, नौ निधियां हैं, ये सब सिद्धियों सहित ब्रह्म का पद भी हम नहीं चाहते। अनंत्यम, अनंत माने मोक्ष, मोक्ष भी नहीं चाहते। अथवा हरिपद, हरे पदम, हरि का पद, हरि का धाम, वैकुंठ इत्यादि लोग भी हम नहीं चाहते। वैकुंठ रामलोक इत्यादि सभी इसमें आ गया, कुछ भी नहीं चाहते वैकुंठ पद, प्रार्थना नहीं करते। केवल क्या चाहती हैं, श्रीमत्पाद रज श्रिय, श्री तो ब्रह्मा इत्यादि के द्वारा सेवित महालक्ष्मी, ब्रह्मा इत्यादि के द्वारा सेवित लक्ष्मी, कुछ कुंकुमे गंध विशिष्ट गदाभृत, ये कौन है महालक्ष्मी? ये कृष्ण के लिए कह रही हैं। इस महालक्ष्मी रुक्मिणी इत्यादि वो पीछे इसकी व्याख्या करेंगे कि गंध से विशिष्ट जो गदाभृत जो कृष्ण हैं, हमारे पति के रूप में हैं, अभी निकट ही हैं। कृष्ण पद रज केवल उसी को धारण करना चाहती हैं अपने सिर पर, मस्तक पर। अब इसी का अर्थ बतला रहे हैं। चारों दिशाओं के आधिपत्य पारमेश्य ब्रह्मपद अनंत हरि का वैकुंठ, ये जो पहले कहे गए हैं, ये कुछ भी हम नहीं चाहते। केवल पदरज वासना कर उनके चरण कमल की रज की प्रार्थना करते हैं। कैसा चरण कमल? जिसको वामन देव ने उठाया अपने चरण को, उस चरण को इसमें लक्ष्मी जी के सी अंगों का कुमकुम है कि नहीं? नहीं, इसलिए ये नहीं। वामन या और भी जितने अवतार हैं, राम के अवतार, उसमें भी ये नहीं है। इसलिए वो जरूर चाहिए कुमकुम। किस लिए कामना करती हो उनके चरण कमलों की? यदि द्रौपदी जी कहती हैं क्या जरूरत है, किस लिए उनके चरण कमल को धारण करना चाहती है, उसके लिए कहते हैं। कांता वर्गों के अपनी जो उनकी कांताएं हैं, उनके सी अंगों के कुमकुम से आढ्य सुवासित है, जिनके चरण, वह जो रज है उनके चरण कमलों की जो रज है, ऐसे कुमकुम से सुवासित है। इसलिए उस रज को जो इसमें गंध है कुछ, रजा कण उसमें मिली हुई है, चरण रज की किस लिए लोभ तुम्हारा हुआ? कहते हैं कि उस रजों में कुमकुम मिला हुआ होगा, जो कि आपकी प्रियाओं के चरण कम के अंगों से निकले हैं। सत ब्रह्मादि के सेवित महालक्ष्मी अथवा कोई कृष्ण का अत्यंत प्रिय अनर्वचनीय जन हो, जो सहसा पत्नी के रूप में कृष्ण ने उसको अंगीकार किया है, जिसको सबसे अधिक प्यार करते हैं, उसका उसके चरण, उसके कुमकुम से मिले हुए कृष्ण का यह चरण रज। सहसा पत्नी रूप में, सहसा किसको लिया? करीब करीब उनकी सभी पत्नियों को सहसा ही ग्रहण किया। सहसा गए रुक्मिणी के विदर्भ में और सहसा उसको हरण करके लेकर के चले। कहीं कितने बड़े बड़े बैल थे जिसको कोई भी नाथ नहीं सकता, कितने उसको कोई नहीं, एक बैल को कोई नहीं नाथ सकता था। और एक साथ में कितने बैल थे, आठ या कितने बड़े भयंकर, और सबको एक साथ में उनको पकड़ करके नस दिया। तो नाग ने जित्या से उनकी शादी हुई, सत्यभामा जी से ऐसे ही शादी हुई। सहसा, सहसा माने अकस्मात हो गई। कैसे? वो उसकी चिंतामणि चोरी करी चली गई और कृष्ण को चोरी लगी और कृष्ण ढूंढते ढूंढते जम्बवान के यहाँ पर पाए और फिर लेकर के आए और फिर दे दिया इनको। अब वो इसके पिताजी को और ये इनका भाई था सत्यराजी, तो उस मणि को लेकर के गया और कहाँ कहाँ क्या हुआ, अंत में वो मारा गया। इसके बाद में इसके पिता को भी मारा, सत्यभामा को पीछे से। तो वही सत्यराजी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सूर्यकांत मणि के साथ में अपनी कन्या का कृष्ण से विवाह कर दिया। कृष्ण से उनका कभी मिलन नहीं हुआ तो भी सहसा हो। इसी तरह से कृष्ण की प्राय पत्नियां 16